नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सात मई को तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले देशभर में प्रचार तेज। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में कहा, 10 करोड़ से अधिक महिला स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता दी गई और किसानों ने ईंधन में एथेनॉल मिश्रण से 70,000 करोड़ रूपये की कमाई की। निर्वाचन आयोग ने बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 मतदान केन्द्रों पर मंगलवार को पुनर्मतदान के आदेश दिए। भारत के धीरज बम देवरा, तरुण दीप राय और प्रवीण जाधव ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप का स्वर्ण पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले मतदान से पहले देशभर में चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1,351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से छोटे किसानों की लागत कम करने और कृषि उपज के लिए बाजार खोलने में सहायता की है। श्री मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में आज एक चुनाव सभा में कहा कि वित्तीय सहायता से 10 करोड़ से अधिक महिला स्व सहायता समूहों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों को ईंधन में एथेनॉल मिश्रण से 70,000 करोड़ रूपये की आमदनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता कानून से व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन होगा।
भारत में न्याय संहिता में दंड को नहीं बल्कि नागरिकों को न्याय मिलने को प्राथमिकता दी गई है। इसमें आतंकवाद से जुड़े कानूनों को भी और सख्त किया गया है। दूसरों पर अत्याचार से जुड़े कानूनों को कड़ा बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर नया प्रावधान किए गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने के बाद ये संहिता देश के हर नागरिक को बहुत मदद करने वाली है।
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना से किसानों को दिए जाने वाले 4,000 रूपये में कटौती करने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि वोट बैंक और तुष्टिकरण की कांग्रेस की राजनीति के कारण राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। उन्होंने हाल ही में हुबली में नेहा हिरेमठ की हत्या और रामेश्वरम कैफे में हुए बम विस्फोट का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केंद्र द्वारा प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से चुनाव के लिए मदद ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस बच्चों को विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब्त की गई संपत्ति अपने वोट बैंक को देना चाहती है। उन्होंने एचएएल और भारत में बने कोरोना वैक्सीन पर झूठा अभियान चलाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। श्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम पर संदेह करने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठी बातें कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। प्रधानमंत्री ने राजा महाराजाओं द्वारा अपनी प्रजा से धन की उगाही करने और नागरिकों पर अत्याचार करने के राहुल गांधी के आरोप की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज, रानी चेन्नम्मा, बड़ोदरा के गायकवाड़ अहिल्याबाई होलकर और मैसूर के वाड़ेयार दयालु राजा थे। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी औरंगजेब, नवाबों, निजामों और सुल्तानों की आलोचना की हिम्मत नहीं करते जिन्होंने मंदिर नष्ट किए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र एक नया आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की गारंटी है। अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव एक मजबूत और विश्वसनीय लोकतंत्र का सशक्त मानक बनेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सत्ता में आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुई है।
25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कामयाबी हासिल की है, तो हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की यह रिपोर्ट है कि आज भारत में गरीबी सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन हम इतने से संतुष्ट नहीं हैं। गरीबी को हम लगभग समाप्त करना चाहते हैं और हमारा टारगेट है कि विद इन 5 to 10 ईयर भारत से गरीबी को हम पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब होंगे।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। उन्होंने कांग्रेस पर 50 वर्ष तक सत्तारूढ़ रहने के बावजूद गरीबी मिटाने में विफल रहने का आरोप लगाया। श्री सिंह ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले 10 वर्षों में देश से गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार का व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता से देश का प्रधानमंत्री बन जाए, ये लोकतंत्र की असली ताकत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आज अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर सूरत लोकसभा सीट जीती है। श्री सिंघवी ने कहा कि भाजपा धन, तंत्र और जनशक्ति तीनों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाजपा के 417 उम्मीदवारों में से 1/4 उम्मीदवार दूसरे दलों से भाजपा में आए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में कल चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज कई बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज कासगंज जिले में एक रैली में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने पर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के सभी वायदे पूरे किए हैं। श्री शाह आज मैनपुरी और इटावा में भी रैलियां करेंगे। वे कानपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने बरेली के बदायूं और आंवला में जनसभाओं को संबोधित किया। वे एटा जिले में रैली करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल जिले में कहा कि राज्य की जनता ने पहले 2 चरण के चुनाव में भाजपा को करारा जवाब दिया है। वे आज बरेली में एक रैली को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव समन्वयक आकाश आनंद आज सीतापुर जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। असम में लोकसभा चुनाव के 3रे चरण में गुवाहाटी, बारपेटा, कोकराझार और धुबरी सीट पर 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा, AIUDF प्रमुख बद्रुद्दीन अजमल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट प्रमुख हगरमा महिलारी रैलियां कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह कल गुवाहाटी में रोड शो करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में 6 मतदान केंद्रों पर मंगलवार 30 अप्रैल को दोबारा मतदान के निर्देश दिए हैं। पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले शुक्रवार को मतदान हुआ था। इन मतदान केंद्रों पर 26 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया गया है। इनमें से 5 मतदान केंद्र उखरूल में और 1 सेनापति जिले में है। देश के प्रमुख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज चर्चा मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट की। भोपाल ने कई नामचीन हस्तियां देश को दी हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी मैमूना सुल्तान, आरिफ बेग और उमा भारती के नाम प्रमुख हैं। एक रिपोर्ट।
भोपाल लोकसभा सीट भाजपा का अवैध गढ़ है। भोपाल में 1957 से 1984 तक 27 साल तक कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन 1989 से यहां भाजपा का कब्जा है। हालांकि नवाब पटौदी, सुरेश पचौरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को उम्मीदवार बनाने के बाद भी कांग्रेस भोपाल में फिर चुनाव नहीं जीत पाई है। भोपाल लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 भाजपा और 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। भोपाल लोकसभा सीट के लिए इस बार कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने भोपाल के महापौर रहे आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अरुण कुमार श्रीवास्तव को टिकट दिया है। भोपाल लोकसभा सीट पर 23 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें करीब 11 लाख 91,000 से ज्यादा पुरुष और लगभग 11 लाख 27,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
तमिलनाडु के नीलगिरी की जिलाधिकारी एम अरुणा ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी 20 मिनट तक बाधित रही, लेकिन इसे तुरंत ठीक कर लिया गया। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रदेश भाजपा के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कोयम्बटूर में कहा कि निर्वाचन आयोग को इस मुद्दे को देखना चाहिए और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की स्थिति के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संदेशकाली में असामाजिक तत्व महिलाओं के लिए अब भी खतरा है। जांच एजेंसियों पर हमले के बारे में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में अराजकता पैदा कर रही है। दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने त्यागपत्र दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी। श्री लवली ने कहा कि आम आदमी पार्टी का गठन ही कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाकर किया गया था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जाने का फैसला किया, जिससे दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि सुधार और लोक शिकायत विभाग का शिष्टमंडल आज से 3 दिन के बांग्लादेश दौरे पर है। ये शिष्टमंडल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच हुए समझौते के नवीकरण पर चर्चा करेगा। एक रिपोर्ट।
शिष्टमंडल में भारत का प्रतिनिधित्व लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास करेंगे। दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2014 में समझौता हुआ था। इसके तहत अब तक क्षमता निर्माण के 71 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और बांग्लादेश के 2,775 उच्चाधिकारियों ने भारत का दौरा किया है। बांग्लादेश सरकार ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपयोगी बताया है और समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत किए जाने में रुचि दिखाई है। समाचार कक्ष से सकलेन अख्तर।
और अब खेल जगत की खबरें आकर्षिता सिंह से।
भारत ने तीरंदाजी विश्व कप का स्वर्ण पदक जीत लिया है। चीन के शंघाई में रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में भारत के धीरज बोमा देवरा, तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव ने दक्षिण कोरिया के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन टीम को हराकर यह खिताब जीता। भारत ने अब तक इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। इससे पहले कल मौजूदा एशियाई चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में 4 स्वर्ण पदक जीता। प्रियांश ने पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में पहला विश्व कप रजत पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में होगा। प्रतियोगिता में कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 7 मई को तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले देशभर में प्रचार तेज। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में कहा 10 करोड़ से अधिक महिला स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता दी गई और किसानों ने ईंधन में एथेनॉल मिश्रण से 70,000 करोड़ रूपये की कमाई की। निर्वाचन आयोग ने बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 मतदान केन्द्रों पर मंगलवार को पुनर्मतदान के आदेश दिये और भारत के धीरज बोम देवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।